वो अभी तक उन्हें नजर नहीं आता, तो वो बेचारे क्यों त्याग करेंगे। पहले से ही जीवन में बहुत सारी मुश्किल आते हैं, तो बाकी भी त्याग का सोचे, अपने जीवन को और मुश्किल बनाए, कोई अट्रैक्शन उसमें नहीं है। परंतु जब त्याग के द्वारा भाग्य हमें अनुभव होता, तो जो वो हमारा भाग्य देखेंगे, इतनी खुशी, इतना प्रेम, इतनी शक्ति, इतनी पवित्रता की झलक, तो जब भाग्य देखेंगे तो उनको अट्रैक्शन होगा। वो भाग्य एक एडवर्टाइजमेंट बन जाएगा और वो सोचेंगे कि हमें भी यहां से कुछ मिल सकता। वो उसने चलने का पुरुषार्थ करने के लिए तैयार होंगे। द सेकंड स्टेज एक स्वाभाविक रीति से त्याग, जिसमें ये न लगे कि हमने कुछ त्याग किया है। दादियां जब शुरू की कहानियां सुनाती है, तो उसमें आप लोगों को मालूम है कि कराची में तो सब कुछ था, बाबा के भंडारे से सबकी पालना हो रही थी। आबू में आकर पहुंचे तो सी लेवल से पहाड़ी तक आ गए, और फिर वहां पर ठंडी का मौसम, कराची में कभी ठंडी देखी नहीं थी। और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि ब्रिज कोठी के नीचे वो भूत पूजा करने वाला भी बैठा था, तो अनेक समस्याएं आने लगी। इतना तक जो बाबा कहते थे, अच्छा चलो बाबा आपको वतन में नाश्ता कराएंगे, बाबा के भंडारे में उस समय कुछ नहीं था। परंतु दादियां जब उस समय का वर्णन करती, बिल्कुल इतना खुशी से, क्यों? क्योंकि कराची में तो 7 अलग अलग मकानों में रहते थे। परंतु जब आबू में आए, और बाबा ने खास जब दीदी मन मोहिनी को भेजा था ग्रुप के साथ स्थान देखने के लिए, बाबा ने ये खास ये कहा था कि एक ही छत के नीचे सब बच्चे रह सके। वहां तो नहीं रह सकते थे कराची में, तो यहाँ जब नए से शुरू हो रहा था, बाबा की खास ये आज्ञा थी। और उसमें भी बाबा ने कहा कि ऐसी जगह ढूंढो जहां संसार की नजरों से दूर हो। तो आजकल भी आबू पर्वत थोड़ा दूर है, परंतु उन दिनों में तो रोड भी ठीक नहीं था, तो फिर बहुत संसार से दूर था। पॉपुलेशन आबू की क्या थी, 60s में भी मैं सुनती थी 5,000 की पॉपुलेशन थी, आज तो सब कुछ बढ़ गया है। तो कहने का मतलब कि बिल्कुल ऐसी जगह थी, बिल्कुल शांत शांत एकांत एकांत, बाबा और मम्मा और बच्चे, संसार में जैसी कोई और है ही नहीं। तो वो सदा उस खुशी का वर्णन करती हैं, वो बाबा के प्रेम का वर्णन करती हैं, कोई और बात नहीं। कल ही मैं किसी को लंदन की शुरुआत की कहानी थोड़ी सुना रही थी कि दादी जब लंदन में आई तो 2 छोटे कमरे थे, बस यहां तक ही था। और फिर उन 2 छोटे कमरों में एक जो कमरा था वो सवेरे के समय क्लासरूम था, दिन के समय बैठने की जगह थी, डाइनिंग रूम भी था, और फिर रात्रि के समय वो सोने का स्थान भी था। और इतनी छोटी सी वो स्पंज था जिस पर मैं पटपट सोती थी, और दादी को लक्कर का दरवाजा कहां से मिल गया था, तो उस लकड़ी के दरवाजे को 4 पहिए लगा करके, क्योंकि दादी को शुरू से ही पीठ की थोड़ी दिक्कत थी, तो उस पर छोटी सी वो स्पंज डाल करके, वो दिन में गद्दी थी और रात्रि को दादी का कद तो छोटा ही है, तो वही गद्दी फिर रात्रि को दादी के लिए सोने का होता था। तो उस जब मैं बता रही थी तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये त्याग तो बड़ा जबरदस्त था, मैंने कहा उस समय त्याग लगता ही नहीं था त्याग है, परंतु बड़ा खुशी खुशी से कि बाबा के घर रहे हुए हैं। तो जब बाबा नजर है और बाबा का प्यार है तो बाकी और क्या चाहिए। तो उस समय भी वो भाग्य ही नजर आता था और सचमुच था भी भाग्य। तो आज भी यदि हमको त्याग त्याग लगता कोई भी बात का, तो मीन्स थोड़ी कुछ कहां दिक्कत हो रही है। परंतु त्याग त्याग न लगे, परंतु त्याग को हम समझें कि ये तो जो कुछ छोड़ रही हैं वो तो बिल्कुल फालतू चीजें छोड़ रही हैं, और बाबा के द्वारा कितनी प्यार की प्राप्ति हो रही है और कितना सब खजाना मिल रहा। तो सेकंड स्टेज त्याग वृत्ति, और फिर थर्ड स्टेज, उसके लिए दादी ने कहा उपराम वृत्ति। और उपराम वृत्ति में ऐसे नहीं कि कारोबार से उपराम, कारोबार में ट्रस्टी, परंतु जब वृत्ति उपराम है तो फिर इस कारोबार में भी हम फंसते नहीं हैं। और कारोबार में भी आप जानते हैं कि जहां मैं और मेरा आ गया उसमें फिर कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती। आप लोगों ने ये कहानी सुनी है या नहीं, परंतु दादी ये भी कहानियां सुनाती कि कराची के दिनों में अपनी मिठू दादी, और मिठू दादी को शायद यहां किसी ने नहीं देखा होगा, देखा था अतिथि बहन ने शायद देखा, मंजू बहन ने देखा होगा, शीला बहन ने देखा था मिठू दादी को। तो कुछ दादियां थी जो शुरू में उनको दादियां ही कहते थे यज्ञ में, क्योंकि वो टीचर के रूप में छोटों को पढ़ाते थे। उनकी आयु खुद ही 17, 18, 16 की थी, परंतु वो दादियां बन उनको दादी कहते थे, जैसे दादी चंद्रमणि, शांतामणि दादी, अपनी दादी प्रकाशमणि और मिठू दादी, इनको दादियां कहते थे। तो मिठू दादी और दादी चंद्रमणि सारे यज्ञ के कारोबार को चलाते थे। तो उस समय फिर बाबा ने थोड़े समय के लिए किसी और को ड्यूटी दी थी कारोबार संभालने के लिए। तो कईयों का संकल्प चला था कि ये तो इतने अनुभवी नहीं है और कोई जास्ती किसने वर्णन भी नहीं किया, परंतु बाबा के पास तो संकल्प भी पहुंच जाते। तो दादी के पास थोड़ा ये संकल्प था, तो बाबा ने उस संकल्प भी पकड़ लिया। तो बाबा ने फिर उस समय क्या बोला, बाबा 8 साल की कुमारी को यज्ञ चलाने के लिए निमित्त रखे, या बूढ़ी माता 80 साल वाली को मटभरी, उसका नाम था मटभरी, छोटी कुमारी का नाम मैं भूल गई हूं, परंतु बाबा ने उसका नाम लिया और फिर 80 साल की बूढ़ी माता का नाम लिया मटभरी, कि बाबा या तो उसको निमित्त रखे कार्य संभालने के लिए या उसको निमित्त रखे कार्य संभालने के लिए। बाबा मालिक है और बाबा करण करावनहार है, बाबा जानते हैं। तो उसमें आपका संकल्प न चले, तो वो बाबा खुद ऐसे बातें बताता तो वो लेसन तो बहुत पक्का हो जाता। तो कहने का मतलब कि जबकि बाबा का कार्य है, हम उसमें ये चैलेंज नहीं कर सकते कि इसको क्यों इसको क्यों इसको क्यों, या ये हम कहें कि ये मेरा ही कार्य है, मैं ही ये कर सकती। नहीं, आज बाबा ने मुझे यहां निमित्त रखा है, कल बाबा मुझे कहीं और जगह निमित्त रख सकता, और बाबा के कार्य में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बाबा का कार्य बस बिल्कुल शांति से, बहुत आनंद से चलता रहेगा। बाबा जिस समय दादी को अमृतसर में रखा, तो कहानियां तो आप लोगों ने सुनी है कि बहुत अच्छी सेवाएं चलती थी, और फिर जिस समय बाबा ने दादी को अमृतसर से निकालकर पुणे में भेजा, तो उस समय लगता तो था कि अमृतसर शहर भी बड़ा, सेवाएं भी बहुत अच्छी, पुणे तो बहुत सिंपल छोटा सा था उस समय, और वो पूना में इतनी सेवाएं भी नहीं थी, परंतु बाबा जानते हैं बाबा को क्या करना है, फिर और आगे वहां से कितनी सेवाएं होने वाली है बाबा जानते थे, और कोई नहीं जानता था। तो बाबा ने दादी को कहा कि अभी आपको अमृतसर में पत्र व्यवहार भी नहीं करना है, अभी बाबा ने दादी चंद्रमणि को रखा है और दादी चंद्रमणि के साथ सबकी रग जुट जाए, कनेक्शन बन जाए, उसमें यदि आप अपना पत्र व्यवहार करेंगी तो उसमें डिस्टर्बेंस होगा। तो आप सोचो कि स्थापना करने के बाद थोड़ा संकल्प तो चलता है ना कि इनको पालना भी चाहिए, परंतु बाबा कहता है कि बस अभी जिसको निमित्त रखा है वो करेंगे, अभी आपका संकल्प न चले। तो उस घड़ी बिल्कुल बाबा में इतना विश्वास हो, ड्रामा में इतना विश्वास हो, परिवार में इतना विश्वास हो, जो दिल को वहां पर बुद्धि न जाए, इसको कहते हैं उपराम वृत्ति। मैं भूल गई एक स्टेज और बीच में, अनासक्त वृत्ति। अनासक्त वृत्ति जिसमें कहां पर भी ये मैं और मेरापन न हो। तो जब अनासक्त वृत्ति है तो फिर उसमें सचमुच हम ट्रस्टी होकर के बाबा के कारोबार को संभाल पाते हैं, उसमें फिर कुछ और संकल्प नहीं चलता। बाबा, बाबा का कार्य और अच्छी तरह से ऑनेस्टी से, सच्चाई से हम उसको संभालें। और फिर नेक्स्ट है उपराम वृत्ति। आप सोचो कि जिस घड़ी कारोबार होती है तो कारोबार करते भी हमें बाबा याद रहे तो उसको कहेंगे उपराम। और फिर उसमें कमेंट्स तो जरूर आएंगी ही, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। बड़ा परिवार है, छोटा परिवार होता तो 3 लोग कहने वाले होते, बड़ा परिवार है तो 300 लोग कहने वाले होते। तो इतनी मोटी चमड़ी हो जो उनों की बातें सुनते भी रहो, परंतु हमारे दिल में उसका कुछ दुख भी न हो। और फिर जो हमारे काम की बात है, यूजफुल बात है, वो हम सुनकर उसको जीवन में धारण भी करें, ऐसे भी नहीं कि हम इग्नोर करें, परंतु वो समझ करके धारण भी करें। परंतु फिर साथ साथ हमारे मन के अंदर उसका कुछ भारीपन न आए। तो ऐसे बाबा हमारे से स्टेज चाहते हैं, क्योंकि जब एक एक बात को हम देखते जाएं कि हम कहां तक पहुंचे हैं, तो फिर हमें पता चलेगा कि हाँ, कैसे एक सेकंड के अंदर बाबा का बुलावा और आत्मा उड़ के जा सकती। जिस समय ब्रह्मा बाबा को बुलावा आया तो बाबा ने अपना अनुभव में ये बात सुनाई, जो फिर दादी कुलसार हम लोगों को फिर वापस आकर के ट्रांस मैसेज में पूरा डिटेल सुनाया था। तो बाबा से पूछा गया कि बाबा, अंतिम घड़ियां आपको क्या याद आया, आपका अनुभव क्या था? तो सबके मन में ये प्रश्न तो था, परंतु खास दादी गुलजार ने बाबा से ये प्रश्न पूछा वतन में। और बाबा ने कहा कि ये तो ऐसा प्रश्न है जो कभी लौकिक बच्चे अपने बाप से कभी पूछ ही नहीं सकते। कैसे पूछेंगे? परंतु ये भी अलौकिक नवीनता है जो बच्चे प्रश्न भी पूछते और बाप उसका उत्तर भी देते। तो बाबा ने कहा कि 3 अनुभव रहे उस घड़ी। एक अनुभव ये था, एक तरफ कर्म भोग, दूसरे तरफ योग बल। और पहले कर्म भोग खींच रहा था, जो बाबा के चेहरे पर उन्होंने पहले दर्द देखा और फिर बाबा का चेहरा बिल्कुल शांत हो गया। तो योग बल की जीत हुई कर्म भोग के ऊपर। तो पहले तो ये युद्ध चली, परंतु उसमें फिर योग बल की जीत हो गई। दूसरा अनुभव ये रहा कि सब बच्चे, सारा संगठन बाबा के सामने था और बाबा सबसे बहुत न्यारा और प्यारेपन का अनुभव कर रहे थे। बच्चे हैं, परंतु कोई एक विशेष बच्चा उस समय याद नहीं था, सारा संगठित रूप में ही सब बच्चे परिवार याद था। और तीसरा अनुभव, मैं बाबा को कह रहा था, बाबा आपको रखना है तो मैं रहने के लिए तैयार हूं, आपको बुलाना है तो मैं आने के लिए भी तैयार हूं। तो जिसने 33 साल इतनी मेहनत करके, इतनी सब बातों को पार करके यहां तक यज्ञ को पहुंचाया, अंतिम घड़ियां किस तरह से रही, वो बाबा की कब से प्रैक्टिस हुई होंगी, तो फिर वो अंतिम घड़ियां भी ऐसे होंगी। तो ऐसे उपराम वृत्ति का जब हम प्रसारित करेंगे तो हमारे पास वो गारंटी होंगी कि हाँ, अंत समय बाबा। और सहज सहज हम ये वस्त्र उतार कर, ये खल छोड़कर बाबा के पास पहुंच जाएंगे। तो एक तो हम अपनी वृत्ति को देखते जाएं कि कहां पर हमारी किस प्रकार सी वृत्ति है, और फिर दूसरा, खास अपनी स्थिति का थर्मोमीटर साकार मुरली में भी, अव्यक्त मुरली में भी, बाबा खास समय ये बताते कि हमारा थर्मोमीटर है खुशी। परंतु खुशी से पहले हमें अपने को संतुष्ट रहना और औरों को संतुष्ट करना ये सीखना होता। क्यों? क्योंकि यदि आज हमें वो खुशी नहीं तो फिर हम औरों की सेवा किस तरह से करेंगे। हर एक को यह अनुभव है कि जब अंदर में खुशी है तो सेवा कितनी भी मिले भारी नहीं लगता, और यदि कोई कारण से खुशी इतनी नहीं है तो फिर भारीपन आ जाता, फिर सोचते हैं कि कैसे होगा, कितनी और हमें मदद चाहिए, ये सब प्रश्न, ये सब बातें मन में आती रहेंगी। परंतु यदि हमारे अंदर खुशी है, और खुशी कोई बाबा के बच्चों को बाहर के स्थूल वस्तुओं से नहीं होती, क्योंकि जब बाबा के यज्ञ में बैठे हैं, हर प्रकार से जितनी बाबा के बच्चों को सुविधाएं हैं, बाहर वालों को इतनी नहीं होती। ये तो रियलिटी, राइट? आप मानेंगे इस बात को कि बाबा ने जितना हमें सुखी बनाकर रखा है, कोई और संसार में इस तरह से सुखी नहीं है। बेशक महल में रहने वाले होंगे, परंतु उन्हों को भी कोई न कोई बात का फिक्र जरूर होगा, और बाबा के बच्चों को कोई प्रकार का फिक्र ही नहीं, बाबा संभाल रहा है, बाबा चला रहा है। तो वो बात तो हर एक के लिए सेम है, कोई उसमें फर्क नहीं। परंतु जो आंतरिक खुशी है, वो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, या ये भी कहें कि दिनों दिन उसका फर्क होता, आज कुछ स्थिति एक है, कल कोई और कुछ होगी, सवेरे कुछ है, शाम को फिर कुछ और है। तो यदि हम अपने को बिल्कुल संतुष्ट रखते हैं, आत्मा अपने मन के अंदर वो त्याग वृत्ति के आधार से कुछ चाहिए ही नहीं, अपने को बिल्कुल संतुष्ट रख लिया, तो फिर वो खुशी हमारे साथ रह सकेंगी। यदि कोई कारण से भी हम असंतुष्ट है तो फिर खुशी नहीं रह पाएंगे। बहुत अच्छा डेफिनेशन हमने कल पढ़ा, किसी ने आर्टिकल लिखा है, तो उसमें ये है शब्द कि जो सिंपल लिविंग कहते हैं, सिंपल लिविंग में ये नहीं है कि आप अपने को कुछ मुश्किलात में डालो, परंतु सिंपल लिविंग में है कि जो आपके पास हो आप उसमें संतुष्ट रहें, राइट? सिंपल में वैसे ही समझते हैं कि बहुत टू मच गरीबी जैसे हो, तो वो गरीबी की बात नहीं है, परंतु जो है ड्रामा अनुसार जो है मेरे पास मैं उसमें संतुष्ट रहूं, तो वो सिंप्लिसिटी नजर आएंगे। तो बाबा ने तो संतुष्टता के ऊपर बहुत सारी बातें बताई है, परंतु यदि आज भी हम अपने को देखें कि तन की तबीयत कुछ भी हो, क्या मन इतना डिटैच है जो हम अंदर संतुष्ट रह सके? यदि संतुष्टता है अंदर, तो फिर वो तन की बीमारी भी जल्दी ठीक हो जाती है। मुझे पता है कि यहां भी कई ऐसे भाई हैं जिन्हों का ये अनुभव रहा है, राइट? कि मन को खुश रखने से तन की तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो गई, जो डॉक्टर्स को भी आश्चर्य लगा। और फिर दूसरे लोग कहेंगे कि तन ऐसा है, कैसे हम खुश रह सकते? नहीं, ये जानते हैं कि हिसाब किताब जो भी है यहां ही चुकतो हो जाएगा, तो और ही हम फ्री हो जाएंगे। बाद में चुकतो करें उससे तो अच्छा है अभी चुकतो हो। मम्मा सदा यही कहती थी कि धर्मराजपुरी को न देखना है तो अच्छा है यहां ही सब कुछ चुकतो हो जाए, जो भी बात है यहीं फिनिश हो जाए। तो बाबा ने तन को कैसे भी हो परंतु मन हमारा खुश रहे अनेक प्रकार के पॉइंट्स बताई है। और न सिर्फ पॉइंट्स की बात है, आप लोगों ने दादियों को प्रैक्टिकल देखा है। एक एक दादी ने ये टेस्ट पास करके अपने चेहरे को किस तरह से रखा वो आप लोगों ने प्रैक्टिकल देखा है। मधुबन निवासियों को फायदा ये है कि बड़ों का बहुत गहरा कनेक्शन रहता। और हाँ, अभी सीजन बदलती जा रही है, जो पहले वो पालना होती थी वो नहीं हो पाती, परंतु फिर भी जितना आप लोगों का सीनियर्स के साथ कनेक्शन रहता, कोई भी सेंटर में इतना तो नहीं होता, तो उन सब के एग्जांपल्स भी आपके सामने आते होंगे। तो तन कुछ भी हो परंतु मन हमारा शांत चित रहे, संतुष्ट रहे, उस बात को भी स्वीकार करें। ऐसे नहीं कि हम बीमारी को निमंत्रण देते हैं, परंतु अभी मेहमान आ गया है तो इस मेहमान को तो प्यार से संभालना होता। इस मेहमान को धिक्कार करेंगे तो वो जाएगा ही नहीं, बीमारी और फिर और आगे बढ़ती जाएंगी। परंतु मेहमान आया है, उसको संभालो, फिर जल्दी में वो छुट्टी लेकर के संतुष्ट होकर के चला जाएगा। धन की प्रॉब्लम तो आपको है ही नहीं, राइट? बाबा रक्षक है, बाबा पालनहार है, सब कुछ बाबा कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं। तो आत्मा उस कारण से भी असंतुष्ट हो वो प्रश्न ही नहीं उठता। मन, मन हमारा कब कैसे क्यों? एक मुख्य कारण, हम मन को सही रास्ते पर नहीं लगाने जानते हैं। कल की मुरली में थोड़ा झांक करके आई हूं, तो आप सुनेंगे पूरी मुरली, परंतु पावन ने बताया है कि चाट रखने में सुस्ती क्यों करते? चाट यदि रखेंगे तो चुस्त रहेंगे, परंतु माया इसी में ही सुस्ती करा लेती। परंतु कहने का मतलब कि बेशक लिखने की भी बात नहीं है, परंतु अपनी इंटरनल चेकिंग चले कि मन मेरा किस तरफ जा रहा है। मन को हमने अच्छे काम में लगाया तो फिर मन हमारा बहुत संतुष्ट रहेगा। मन को हमने काम नहीं दिया तो फिर फालतू बातों में चला जाएगा। कोई भी व्यक्ति फ्री बैठा होगा तो फिर ढूंढेगा मैं कहां जाऊं, क्या करूं। कोई व्यक्ति को अच्छी तरह से पूरा टाइम टेबल सेट है, व्यस्त है, तो फिर कहां संकल्प ही आने की मार्जिन नहीं है कि मैं यहां जाऊं, मैं वहां जाऊं, ये करूं वो करूं। तो मन को संतुष्ट रखने के लिए, मन को व्यस्त रखना बाबा के ज्ञान की बातों में, बाबा की याद की बातों में, उससे आत्मा बहुत हेल्थी रहेंगे, बहुत तंदुरुस्त रहेंगे। और फिर संबंध, संबंध में आप सोचो कि जब हम बाबा के पास आए हैं तो कल ही शायद था या दो दिन पहले बाबा कह रहे थे कि सारे ही जो कर्म बंधन थे, बाबा कहते हैं कि बुद्धि से उसको भूल जाओ। और अब जो है बाबा कर्म संबंध का अनुभव करा रही हैं। तो मेरा प्रश्न है, जबकि हम बाबा के पास आए तो वो जो पूर्व का हिसाब किताब था, बहुत करके जो यहां बैठे हैं वो तो छोड़ के यहां आ गए, परंतु उसमें भी मानो कि आप घर पे भी रहती हैं, जो माताएं सामने बैठी है सेवा करने के लिए आई है, आप तो घरों में रहते हैं, परंतु बाबा का उसमें बहुत सिंपल बात थी कि जिस घड़ी आप अपने को आत्मा समझकर आप अपने को न्यारा रखेंगे और फिर आप ये ध्यान रखेंगे कि कोई विकार का असर न हो, तो वो हिसाब किताब चुकतू होगा, वो फिर और आगे बढ़ेगा नहीं। ये कल या परसों की मुरली में ये बात थी खास कि कर्म बंधन को फिनिश करने के लिए बुद्धि से भूल जाओ और दूसरा कोई विकारी कर्म अथवा विकार का असर न हो तो वो हिसाब किताब फिनिश। अभी हम बाबा के घर बैठे हैं और अभी हमारा आपस में लेन देन किस प्रकार से चल रहा है, यदि हमारा लेन देन चलता है आत्म स्मृति का, बाबा की याद का, तो जितना भी हमारा नजदीक का संबंध होगा, क्योंकि कोई भी कार्य अकेला तो कोई व्यक्ति नहीं करता, अनेकों के संबंध से करता, परंतु यदि हमने ये बात ध्यान पर रखी कि मैं आत्मा और साथ साथ बाबा का कार्य, तो बाबा साथ है, तो फिर उसमें जो हमारा लेन देन होगा कोई विकार की छाया न है, तो ये कोई हमारा हिसाब किताब आपस में नहीं है, परंतु बाबा हमें ट्रेनिंग दे रहा है सत्युग की, संस्कारों को बना करके सत्युग घराने की स्थापना करने के लिए। परंतु यदि इस व्यवहार में कभी क्रोध आया, कभी मोह आया, कभी अहंकार आया, तो फिर आप सोचो कि वो जो शुद्ध ब्राह्मणों का संबंध होना चाहिए उसमें कुछ न कुछ फिर मिलावट आ गई और फिर उसमें दुख जिस घड़ी होने लगा तो फिर उसको क्या कहेंगे। कर्म बंधन फिर से हमने शुरू कर दिया, पहले नहीं था, बाबा के पास हम आए तो बिल्कुल फ्री होकर के आ गए, बाबा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, परंतु हम खुद को भूले, बाबा को भूले और बातों की पुराने संस्कारों की छाया आ गई, तो फिर वो लेन देन शुरू हो गया, वो हिसाब किताब शुरू हो गया और फिर उसको समाप्त करना और बहुत मेहनत होती। उसको भूल जाना सहज था, परंतु ये जो फिर आ जाता उसमें फिर और अधिक मेहनत लगती। जो सहज राजयोग था उसको हमने बदल करके मेहनत का राजयोग बना लिया या युद्ध का राजयोग बना लिया। तो बाबा कहते हैं कि बस ऐसे आपसी संबंध हो जिसमें बाबा बीच में हो और फिर साथ साथ अपने कर्तव्य पर, अपने कर्तव्य में हम ये ध्यान रखें कि दैवी गुण संपन्न हो और कोई बात उस बीच में ना आए। तो हर प्रकार से मैं अपने को संबंध में भी संतुष्ट रखूं। और दूसरी एक बात आती है ब्राह्मणों के संबंध के व्यवहार में, हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और दादियों का हमने देखा है कि वो अपने से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो औरों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, अपने लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड बनाकर रखते हैं कि मुझे किस तरह से चलना है, मुझे किस तरह से व्यवहार करना है, परंतु औरों से वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, एक्सपेक्टेशन अलग। तो जैसे आज बाबा ने कहा कि बस संगम योगी पुरुषोत्तम ब्राह्मण हूं, आज की टाइटल कितनी श्रेष्ठ, कितनी जबरदस्त। यदि उस एक टाइटल को याद करे कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मेरे तरफ से व्यवहार किस प्रकार से हो, वो मेरी जवाबदारी, बाकी दूसरे के लिए ठीक होगा, जो होगा वो ठीक होगा, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं। क्योंकि एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उन्होंने भी तो आज मुरली सुनी ना, तो वो क्यों नहीं कर रही है, पहले तो आज मैंने मुरली सुनी और मैं क्या कर रही हूं ये ध्यान है मुझे। और यदि मुझे ध्यान है कि आज बाबा ने क्या कहा और मुझे क्या करना है, तो फिर उस अनुसार और देख करके फिर उसे प्रेरणा लेंगे, कोई और प्रश्न फिर नहीं आएगा। तो जब हम अपने को संतुष्ट रखते हैं संबंध में, तो फिर औरों को संतुष्ट करना सहज होता। हम खुद ही संतुष्ट नहीं है तो बीज ही ठीक नहीं है, तो फिर और बाकी व्यवहार किस तरह से होगा। जब अव्यक्त बाबा ने ये संतुष्टता की बात कही थी, तो दादी कुमार ने बाबा से पूछा था, क्योंकि मेडिटेशन हॉल में जब बाबा आते थे तो बहुत नजदीक का होता था, दादी यहां बैठती थी और बाबा यहां बैठते थे, तो दादी ने बाबा को कहा कि बाबा कभी कभी तो कितना भी कोशिश करते हैं वो आत्मा संतुष्ट नहीं होती है, तो क्या किया जाए। दादी ने बहुत प्रैक्टिकल, बहुत सच्चाई से अपनी बात पूछी, तो बाबा ने कहा अच्छा 5% की मार्जिन बाबा देते हैं, 95% आपसे संतुष्ट है, तो बाबा कहेगा हाँ ठीक है, यदि 5% आपसे संतुष्ट नहीं है, तो बाबा कहेगा कि चलो आगे चल करके वो भी अपने को समझ कर संतुष्ट रहेंगे, परंतु वो बाबा फिर आपके ऊपर नहीं रखेगा, परंतु 95 को तो हम संतुष्ट कर सके, सबके लिए तो ये नहीं कह सकते वो है ही ऐसे, नहीं ऐसे नहीं, हमें क्या करना है वो हमें ध्यान रखना है। तो संतुष्टता में हर प्रकार से ये सब जो भी बातें बाबा ने बताई है, वो सब बातों से हम करते, कार्य देखते, सब कुछ व्यवहार करते हम संतुष्ट रहेंगे, तो फिर और भी संतुष्ट। परंतु मेन बात उसमें हम खुशी खुशी से उड़ते रहेंगे। संगम युग की ये जो बहुत इतनी कीमती जीवन है, हमें उसमें बहुत फायदा होता रहेगा, नहीं तो संगम युग के दिन बहुत फास्ट बीत जाते हैं। आप सोचो अक्टूबर में सीजन शुरू हुई, अभी आधे दिन गया, दिन आए रात गई, पता चला 6 मास ऐसे ही फास्ट बीत के चले गए। मुझे अभी यहाँ 2 मास हुआ है, 2 मास से अधिक, तो वो भी कैसे समय चला गया पता नहीं चला। और फिर बाबा नेक्स्ट आएंगे, वो भी अभी बीच का समय फास्ट फास्ट चलता जाएगा। तो संगम युग में समय बहुत फास्ट जाता, वैसे नहीं होता इतना फास्ट, संगम युग में खास इतना फास्ट होता, परंतु वो एक एक घड़ी संगम युग की कितनी कीमती है और कितनी हमें प्राप्ति हो सकती, वो हम अनुभव करते चले। तो आप सब तो बहुत अनुभवी बैठे हैं, परंतु ये 2 बातें मुझे शेयर करनी थी, एक तो वृत्ति की बात और दूसरा अपना खुशी का थर्मोमीटर अथवा संतुष्टता अपने आप को देखें। बाकी तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स, ஓம் சாந்தி.